एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास, बहुत ही मार्मिक किताब पर बात करने वाले हैं।
हाँ, एक ऐसी किताब जिसने वाकई दुनिया भर में बहुत से लोगों पर गहरा असर डाला है, When Breath Becomes Air।
बिल्कुल, और ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक जिंदगी की कहानी है, एक सफर है।
सही कहा। इसके लेखक पॉल कलानिधि एक न्यूरोसर्जन बनने की राह पर थे।
भारतीय मूल के अमेरिकन।
हाँ, और सिर्फ न्यूरोसर्जन ही नहीं, मतलब स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए, जो कि बहुत बड़ी बात है, पर साथ ही साथ उनके पास साहित्य में, मानव जीव विज्ञान में, यहाँ तक कि विज्ञान के इतिहास और दर्शन में भी डिग्रियां थीं।
कमाल का मेल है ये तो, विज्ञान और मानविकी दोनों में इतनी गहरी रुचि और योग्यता।
बिल्कुल, लेकिन कहानी में जो सबसे अहम मोड़ आता है वो दुखद है, महज 36 साल की उम्र में। हाँ, जब उनका करियर बस शुरू ही होने वाला था एक तरह से,
तभी उन्हें पता चलता है कि उन्हें स्टेज 4 फेफड़ों का कैंसर है।
सोचिए जरा, एक डॉक्टर जो दिमाग की जीवन की गुत्थियां सुलझाने में लगा है,
जो जिंदगियां बचाता है।
हाँ, और उसे अचानक अपनी ही मौत का सामना करना पड़ता है, डॉक्टर से मरीज बन जाना।
ये कल्पना करना भी मुश्किल है, और शायद यही वजह है कि उनकी कहानी आज इतनी जरूरी लगती है ना?
बिल्कुल, ये सिर्फ मौत के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि जब सब कुछ अनिश्चित लगे, तब भी जीवन का अर्थ कैसे खोजा जाए।
और उन्होंने हार नहीं मानी, निराशा में डूबने के बजाय उन्होंने लिखना चुना।
हाँ, उन्होंने अपने बचे हुए समय का इस्तेमाल किया इस अद्भुत किताब को लिखने में। ये किताब डॉक्टर और मरीज के बीच की खाई को भी पाटती है।
तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, पॉल कलानिधि के जीवन की शुरुआत में। वो कौन थे, कहाँ से आए थे?
पॉल का जन्म उइलॉक में हुआ था। उनके माता पिता भारत से अप्रवासी थे। घर का माहौल काफी पढ़ा लिखा था, माँ फिजियोलॉजिस्ट, पिता कार्डियोलॉजिस्ट।
अच्छा, तो मेडिकल बैकग्राउंड तो था ही।
हाँ, तो जाहिर है घर में चिकित्सा का सम्मान था, लेकिन सिर्फ चिकित्सा ही नहीं, ज्ञान के दूसरे रूपों जैसे साहित्य, दर्शन, इनको भी बहुत महत्व दिया जाता था।
और उनका बचपन सुनाए, वो एरिजोना में पले बढ़े।
जी हाँ, उनका परिवार किंगमैन एरिजोना चला गया, रेगिस्तानी इलाका, और वो बताते हैं कि वहाँ वो अक्सर अकेले भारतीय परिवार थे।
तो एक तरह का अकेलापन या बाहरी होने का एहसास रहा होगा।
शायद, और इसी वजह से वो किताबों की तरफ बहुत ज्यादा मुड़ गए। साहित्य उनका पहला प्यार बन गया। वो कैम्यूस, सार्त्र जैसे लेखकों को पढ़ने लगे।
वो लेखक जो बड़े सवालों से जूझते हैं, जीवन, मृत्यु, अर्थ।
बिल्कुल, और वो एरिजोना का रेगिस्तान, उसकी विशालता, उसकी खामोशी, उसने भी उन पर गहरा असर डाला। वो कहते थे कि उस रेगिस्तान ने उन्हें जीवन कितना नाजुक है और साथ ही कितना मजबूत, ये सिखाया।
दिलचस्प है कि कैसे माहौल इंसान को गढ़ता है। फिर उनकी पढ़ाई का सफर शुरू हुआ, और वो भी सीधा रास्ता नहीं था।
हाँ, ये बहुत खास बात है उनके बारे में। उन्होंने सीधे मेडिकल की पढ़ाई नहीं शुरू की। स्टैनफोर्ड में पहले उन्होंने अंग्रेजी साहित्य पढ़ा, मास्टर्स भी किया।
साहित्य,
हाँ,
फिर मेडिकल में कैसे आए?
यही तो, वो मानते थे कि इंसान को, उसकी पीड़ा को, उसकी चेतना को समझने के लिए सिर्फ विज्ञान या सिर्फ साहित्य काफी नहीं है, दोनों चाहिए।
अच्छा, मतलब वो दोनों को जोड़ना चाहते थे।
हाँ बिल्कुल, फिर उन्होंने मानव जीव विज्ञान भी पढ़ा, फिर वो कैम्ब्रिज गए, वहाँ विज्ञान का इतिहास और दर्शन पढ़ा, और वहाँ उन्हें लगा कि इन बड़े सवालों से सीधे तौर पे जूझने का रास्ता शायद चिकित्सा में है,
और खास तौर पर न्यूरोसर्जरी में।
सही कहा, क्योंकि न्यूरोसर्जरी सीधे मस्तिष्क से जुड़ी है, हमारी पहचान, हमारी चेतना। तो वो फिर येल मेडिकल स्कूल गए,
और येल में ही उनकी मुलाकात लूसी से हुई, जो बाद में उनकी पत्नी बनी।
जी हाँ, लूसी गॉडार्ट, वो भी मेडिकल स्टूडेंट थी। दोनों में बहुत कुछ समान था, वही जिज्ञासा, वही करुणा, वो एक दूसरे के बहुत अच्छे साथी बने।
फिर शुरू हुआ रेजिडेंसी का मुश्किल दौर, स्टैनफोर्ड में न्यूरोसर्जरी।
हाँ, और न्यूरोसर्जरी रेजिडेंसी तो बहुत ही कठिन मानी जाती है, लंबे घंटे, जबरदस्त तनाव, हर पल जीवन और मृत्यु के निर्णय।
ये सिर्फ हाथ का हुनर नहीं, दिमाग और दिल का भी काम है।
बिल्कुल, पॉल के लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये उनके लिए अस्तित्व के सवालों से जूझने का एक तरीका था। मरीजों के साथ जुड़ना, उनकी कहानियां सुनना, उनके मुश्किल वक्त में साथ देना,
वो इसमें भी अर्थ ढूंढ रहे थे।
हाँ, उनका रिसर्च भी भाषा, अर्थ और मस्तिष्क के संबंधों पर था। वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली युवा न्यूरोसर्जन के रूप में पहचाने जाने लगे थे। अच्छी नौकरियों के ऑफर आ रहे थे, सब कुछ सही जा रहा था।
और तभी वो मोड़ आया।
हाँ, वो पल जिसने सब बदल दिया। अपनी रेजिडेंसी के आखिरी साल में थे वो, 36 साल के। उन्हें अचानक पीठ में तेज दर्द और वजन कम होने लगा।
फिर लगा होगा कि बस काम का तनाव है।
हाँ बिल्कुल, न्यूरोसर्जरी में ये आम बात है। लेकिन लक्षण बढ़ते गए और फिर एक दिन अपने ही अस्पताल में सीटी स्कैन देखते हुए
उन्होंने खुद ही अपनी रिपोर्ट देखी।
हाँ, एक डॉक्टर होने के नाते वो स्कैन देखते ही समझ गए, ट्यूमर फैले हुए थे फेफड़ों में, रीढ़ की हड्डी में, लिवर में। स्टेज 4 फेफड़ों का कैंसर, लाइलाज।
हे भगवान, ये सोचना भी कितना मुश्किल है। एक पल में आप डॉक्टर हैं, अगले ही पल मरीज, वो भी अपनी ही विशेषज्ञता के दायरे में।
ये सिर्फ भूमिका बदलना नहीं था, ये उनके पूरे वजूद पर एक सवालिया निशान था। वो भविष्य जिसके लिए इतनी मेहनत की,
वो सब धुंधला गया।
हाँ, लेकिन जैसा हमने पहले कहा, उन्होंने हार नहीं मानी। उनका सवाल बदल गया। अब ये नहीं था कि मेरे पास कितना वक्त है,
बल्कि ये कि इस बचे हुए वक्त में मुझे जीना कैसे है।
बिल्कुल, ये गहरा दार्शनिक सवाल बन गया उनके लिए, रोजमर्रा की हकीकत।
क्या उन्होंने काम करना जारी रखा, सर्जरी वगैरह?
हाँ, कुछ समय तक, जब तक शरीर ने साथ दिया, इलाज के मुश्किल दौर के बीच भी। शायद वो अपनी पहचान, वो डॉक्टर होने का एहसास बनाए रखना चाहते थे।
लेकिन फिर उनका फोकस बदल गया।
हाँ, उन्हें समझ आया कि अब उनका मुख्य काम कुछ और है, लिखना।
ये किताब लिखना।
बिल्कुल, अपने जीवन के आखिरी लगभग 2 सालों में उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा इस किताब को लिखने में लगा दी। और इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, वो पिता बने।
निदान के बाद?
हाँ, उनकी बेटी कैडी का जन्म उनके कैंसर निदान के बाद हुआ। परिवार के साथ वक्त बिताना, अपनी बेटी को देखना और लिखना, इन्हीं चीजों में उन्हें आखिरी दिनों में सुकून और अर्थ मिला। 9 मार्च 2015 को उनका निधन हो गया। वो सिर्फ 37 साल के थे।
इतनी कम उम्र, लेकिन कितना गहरा जीवन जिया और दुनिया के लिए ये अनमोल तोहफा छोड़ गए। उनके जीवन के मूल दर्शन, उनके मूल्यों के बारे में थोड़ा और बताइए। क्या चीज थी जो उन्हें चलाती थी, खासकर इतनी मुश्किल घड़ी में?
मुझे लगता है उनका मूल विश्वास ये था कि जीवन का मतलब उसकी लंबाई में नहीं है, बल्कि उसकी गहराई में है, उसके उद्देश्य में और दूसरों के साथ हमारे रिश्तों में है।
वो ना तो पूरी तरह भौतिकवादी थे, ना पूरी तरह आध्यात्मिक, एक तरह का संतुलन था।
हाँ, शायद इसे पोएटिक मटीरियलिज्म या काव्यात्मक भौतिकवाद कह सकते हैं। मतलब हाँ, हम शरीर हैं, जैविक नियमों से चलते हैं, लेकिन हम प्रेम, कला, सेवा, अर्थ की तलाश के जरिए इन सीमाओं से ऊपर उठ सकते हैं।
जैसे उन्होंने खुद किया, लिखकर, पिता बनकर।
बिल्कुल, और चिकित्सा को वो सिर्फ एक तकनीकी काम नहीं मानते थे।
नहीं, उनके लिए ये एक नैतिक कार्य था।
हाँ, एक नैतिक और मानवीय कार्य। डॉक्टर सिर्फ बीमारी ठीक नहीं करते, वो लोगों को उनके सबसे नाजुक पलों में संभालते हैं। इसके लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, गहरी सहानुभूति और समझ चाहिए।
और अनिश्चितता को लेकर उनका क्या नजरिया था? डॉक्टर तो अक्सर निश्चितता देना चाहते हैं।
ये बहुत अहम बात है, वो अनिश्चितता का बहुत सम्मान करते थे। वो जानते थे कि जिंदगी के और मेडिसिन के भी बड़े सवालों के आसान जवाब नहीं होते। अक्सर हमें अधूरी जानकारी के साथ ही बड़े फैसले लेने पड़ते हैं।
और उनकी प्रेरणा क्या चीज उन्हें आगे बढ़ाती रही?
शुरू में तो शायद सार्थक काम करने की इच्छा, ऐसा काम जिसमें उनका दिमाग और दिल दोनों लगे, जो दूसरों के काम आए। और बाद में उनकी बेटी कैडी, उसके लिए कुछ छोड़ जाने की इच्छा, उसे बताने की इच्छा कि उसके पिता कौन थे, ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गई।
अगर हम उनके जीवन के 3 सबसे अहम मोड़ चुने तो वो कौन से होंगे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया?
अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से पहला मोड़ तो था चिकित्सा को चुनना। साहित्य और दर्शन से इतना प्यार होने के बाद भी उन्होंने महसूस किया कि इंसानी दुख, दर्द और अर्थ के सवालों से सीधे जुड़ने का रास्ता मेडिसिन है। यह सिर्फ करियर का चुनाव नहीं था, यह दुनिया में अपनी भूमिका बदलने जैसा था।
एक दर्शक से भागीदार बनना।
बिल्कुल। दूसरा मोड़ तो जाहिर है, कैंसर का पता चलना 36 साल की उम्र में। इसने तो सब कुछ पलट दिया, भविष्य, करियर, पहचान। वो डॉक्टर से मरीज बन गए, वो सारे दार्शनिक सवाल जो वो किताबों में पढ़ते थे अब उनकी अपनी जिंदगी की हकीकत बन गए। मुझे कैसे जीना चाहिए, ये अब कोई थ्योरी नहीं थी,
ये रोज का सवाल बन गया।
हाँ, और तीसरा मोड़ जो शायद बहुत हिम्मत का काम था,
पिता बनने का फैसला।
हाँ, मेरे विचार में पिता बनने का फैसला तीसरा अहम मोड़ था। सोचिए, कैंसर का पता चलने के बाद, जब भविष्य इतना अनिश्चित था, पॉल और लूसी ने मिलकर एक बच्चे को दुनिया में लाने का फैसला किया।
ये तो उम्मीद का एक बहुत बड़ा प्रतीक था।
बिल्कुल, ये मौत के सामने जिंदगी को चुनना था। बेटी कैडी के जन्म ने उनके लिए जीवन और मृत्यु के मायने ही बदल दिए, और अपनी बेटी के लिए लिखना, उसे अपनी कहानी बताना, ये उनकी आखिरी और सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया।
ये तीनों मोड़ वाकई उनकी कहानी को परिभाषित करते हैं। तो पॉल कालानिधि के इस जीवन से, इस कहानी से हम आज क्या सीख सकते हैं? आज के सुनने वालों के लिए इसमें क्या है?
बहुत कुछ। सबसे पहली बात तो यही कि जीवन का अर्थ उसकी लंबाई में नहीं, उसकी गहराई में है। पॉल का जीवन छोटा था पर उद्देश्यपूर्ण था। ये हमें याद दिलाता है कि हर पल कीमती है,
और ये कि अनिश्चितता से डरने की जरूरत नहीं है।
हाँ, अनिश्चितता जीवन का हिस्सा है, हम इसे खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके साथ जीना सीख सकते हैं, सोच समझ कर हिम्मत से फैसले लेना सीख सकते हैं, भले ही हमें सारे जवाब ना पता हों।
उनकी बदलती पहचान, डॉक्टर से मरीज, इससे क्या सबक मिलता है?
इससे ये सबक मिलता है कि हमारी असली पहचान हमारी भूमिकाओं से कहीं ज्यादा गहरी होती है। पॉल की भूमिका बदली पर उनके मूल्य नहीं बदले। जिज्ञासा, करुणा, अर्थ की तलाश, ये याद दिलाता है कि हम सिर्फ अपना पद या ओहदा नहीं है, हमारा असली वजूद हमारे चरित्र में है।
और प्रेम और हानि का जो पहलू है,
हाँ, वो दिखाता है कि प्रेम में अक्सर खुशी और दुख साथ साथ चलते हैं। उन्होंने मौत के इतने करीब होकर भी प्यार करने और पिता बनने का साहस दिखाया। ये सिखाता है कि मुश्किल भावनाओं से भागने के बजाय उन्हें गले लगाना जरूरी है।
और शायद सबसे अहम बात जो आपने पहले भी कही,
हाँ, कि अर्थ इस बात में नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि इस बात में है कि हम उस पर प्रतिक्रिया कैसे करते हैं। पॉल ने अपनी बीमारी को सिर्फ एक दुखद घटना नहीं रहने दिया, उन्होंने उसे विकास, सेवा और लिखने का अवसर बना दिया।
उन्होंने अपनी पीड़ा को एक तोहफे में बदल दिया।
बिल्कुल।
तो इस पूरी बातचीत को समेटते हुए, अगर तीन मुख्य बातें करनी हो जो सुनने वाले अपने साथ ले जा सकें, तो वो क्या होंगे?
ठीक है, पहली एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। सबसे गहरा भावनात्मक सबक ये है कि प्रेम और हानि एक दूसरे से जुड़े हैं, और इस सच को हिम्मत से अपनाने में ही सच्चा अर्थ है। मौत के सामने पिता बनने का उनका फैसला दिखाता है कि प्रेम डर से बड़ा है और मुश्किल हालात में भी रिश्ते मायने रखते हैं।
दूसरी, शायद सोचने के स्तर पर,
हाँ, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि। पॉल का विज्ञान और मानविकी को जोड़ना हमें सिखाता है कि जिंदगी की मुश्किल पहेलियों को सुलझाने के लिए अलग अलग नज़रियों को मिलाना जरूरी है। सिर्फ तर्क या सिर्फ भावनाएं काफी नहीं, डॉक्टर और मरीज दोनों नज़रिए से चीज़ों को देखना। ये दिखाता है कि गहरी समझ अक्सर कई कोणों से देखने पर ही आती हैं। दिमाग और दिल दोनों चाहिए।
और आखिर में एक ऐसा सबक जो हम सब पर लागू हो,
एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि। सबसे बड़ा सबक यह है कि जिंदगी का मतलब इस बात से नहीं बनता कि हमारे साथ क्या हुआ, बल्कि इससे कि हमने उस पर प्रतिक्रिया कैसे की। पॉल ने अपनी स्थिति को स्वीकारा पर हार नहीं मानी। उन्होंने चुना कि वो अपना बचा हुआ वक्त कैसे बिताएंगे, लिखकर, प्यार करके, पिता बनकर। ये हमें याद दिलाता है कि हर हाल में हमारे पास अपनी प्रतिक्रिया चुनने की ताकत होती है, और इसी चुनाव में अर्थ छिपा है।
बहुत ही गहरे और जरूरी सबक। पॉल कालानिधि की कहानी हमें याद दिलाती है कि मौत के सामने भी जिंदगी को सार्थक बनाया जा सकता है। ये किताब वाकई पढ़ने और महसूस करने लायक है, और शायद ये सवाल हम सबके लिए है। अगर हमें पता चले कि वक्त सीमित है, तो हम आज क्या चुनेंगे, किस चीज को अपना समय, अपना प्यार देंगे?
हाँ, ये सोचने वाली बात है।
इस गहरी और भावनात्मक बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।